एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। स्वागत। आज हम बात करेंगे अमेरिकी लेखिका एन पैचेट के 2023 में आए एक बहुत ही चर्चित उपन्यास टॉम लेक की।
एन पैचेट की खासियत ही यही है, वो इंसानी रिश्तों की शांत सतह के नीचे जो कुछ भी उथल पुथल चलती है ना,
हाँ,
उसे बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं। उनके उपन्यास, चाहे वो बेल कैंटो हो या द डच हाउस, हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, उन फैसलों के बारे में जो हमारी जिंदगी का पूरा रुख तय कर देते हैं।
और टॉम लेक इसी कड़ी का शायद सबसे, क्या कहते हैं, परिपक्व उपन्यास है। कहानी 2020 की महामारी के दौरान सेट है उत्तरी मिशिगन के एक चेरी के बाग में।
लेकिन असल में कहानी चेरी के बाग की नहीं है।
नहीं, कहानी है यादों के उस बाग की जिसे हम सब अपने अंदर सहेज कर रखते हैं। आज हम इसी बाग की सैर करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक माँ अपनी बेटियों के सामने अपने अतीत को परत दर परत खोलती है।
और इस प्रक्रिया में वर्तमान के मायने ही बदल जाते हैं।
बिल्कुल।
बहुत दिलचस्प, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी स्थिति से जिससे शायद हम सब गुजर चुके हैं, लॉकडाउन।
हाँ, वो दौर।
लारा निल्सन, कहानी की मुख्य पात्र, अपनी तीन वयस्क बेटियों एमिली, मेजी और नेल के साथ अपने चेरी के बाग में फंसी हुई हैं।
दुनिया थम गई है और उनके पास सिर्फ एक ही काम है, चेरी तोड़ना।
और ये जो माहौल है, ये बहुत जरूरी है। चेरी तोड़ने का काम थकाऊ है, दोहराव वाला है।
बिल्कुल।
इसमें दिमाग को भटकने का बहुत समय मिलता है और यही दोहराव, यही बोरियत बेटियों को अपनी माँ के अतीत को कुरेदने पर मजबूर करती है।
वो उस कहानी को सुनना चाहती हैं जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ फुसफुसाहटें सुनी हैं।
हाँ, उनकी माँ का पहला प्यार पीटर ड्यूक, जो बाद में एक ऑस्कर विजेता विश्व प्रसिद्ध अभिनेता बना।
तो मतलब ये लॉकडाउन कहानी को शुरू करने का सिर्फ एक बहाना नहीं, बल्कि एक इंजन है, एक प्रेशर कुकर जैसा, जहां अतीत को बाहर आना ही पड़ता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। यहीं से उपन्यास अपनी दोहरी समय रेखा पर चलना शुरू करता है। एक तरफ 2020 का वर्तमान है और दूसरी तरफ 1980 के दशक की एक जादुई गर्मी की यादें।
जब युवा लारा टॉम लेक नाम की एक थिएटर कंपनी का हिस्सा थी।
हाँ, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी।
तो उस अतीत की दुनिया में चलते हैं। ये टॉम लेक कैसी जगह थी और युवा लारा उस दुनिया में कैसे पहुंची?
युवा लारा एक छोटे से शहर की एक बहुत प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी। उसे अवर टाउन नाम के एक नाटक में अभिनय करते हुए खोजा गया था
अच्छा,
और उसे मिशिगन की एक समर स्टॉक थिएटर कंपनी टॉम लेक में इसी नाटक में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। अब समझ लीजिए कि टॉम लेक कलाकारों के लिए एक जन्नत जैसा था।
रचनात्मकता, जुनून, सपनों की दुनिया।
हाँ, और इसी जन्नत में उसकी मुलाकात होती है पीटर ड्यूक से।
करिश्माई, आकर्षक और जाहिर है बेहद प्रतिभावान।
बिल्कुल, दोनों के बीच एक तूफानी जुनूनी प्यार हो जाता है। ये पहले प्यार का वो दौर है जहां जहां सब कुछ संभव लगता है।
लेकिन एन पैचेट हमें बताती हैं कि हर जादुई दुनिया में कुछ दरारें होती हैं,
हमेशा।
और यहाँ वो दरारें दो किरदारों के रूप में बहुत जल्दी दिखने लगती हैं।
हाँ, आप ड्यूक के भाई सेबेस्टियन और लारा के अंडरस्टडी पैलेस की बात कर रही हैं।
उन्हीं की, सेबेस्टियन ड्यूक का बड़ा भाई, उसका ठीक उल्टा है, शांत, जिम्मेदार।
हमेशा अपने भाई की गलतियों पर पर्दा डालने वाला।
हाँ, वो एक तरह से वो लंगर है जो ड्यूक जैसे तूफानी जहाज को संभाले रखता है।
और दूसरी तरफ है पैलेस,
जो एक बेहतरीन डांसर है लेकिन
लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर है, टूटी हुई है। एक तरह से देखें तो सेबेस्टियन वो जमीन है जिस पर ड्यूक खड़ा है और पैलेस वो आईना है जिसमें लारा का एक दूसरा, ज्यादा डरावना भविष्य नजर आता है।
ये दोनों किरदार हमें शुरू से ही बताते हैं कि इस खूबसूरत कहानी का अंत शायद उतना खूबसूरत नहीं होगा।
बिल्कुल।
तो ये सुनहरी गर्मी एक त्रासदी में कैसे बदल गई? वो कौन सा मोड़ था जिसने इस जादुई दुनिया को बिखेर दिया?
कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दुर्घटना में लारा के टखने में चोट लग जाती है।
अच्छा,
उसे मुख्य भूमिका छोड़नी पड़ती है और उसकी जगह पैलेस को मंच पर आना पड़ता है।
ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या कहानी में एक तरह का दैवीय हस्तक्षेप था जो लारा को उस रास्ते से हटने का मौका दे रहा था जिस पर वो शायद खुश नहीं रहती?
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये चोट लारा को मंच से हटाकर दर्शकों में बिठा देती है।
वो जुनून के उस बवंडर का हिस्सा नहीं रहती बल्कि उसे बाहर से देख सकती है।
सही। और जब वो देखती है तो उसे ड्यूक के स्याह पक्ष नजर आने लगता है, उसकी असुरक्षा, उसका अस्थिर स्वभाव।
अपनी माँ के साथ उसका अजीब रिश्ता।
हाँ, उसे एहसास होता है कि इस करिश्मे के पीछे एक गहरा खालीपन है।
और मंच पे पैलेस का क्या होता है?
मंच पर तो पैलेस चमक उठती है, वो एक सितारा है, लेकिन मंच पर मिली सफलता उसकी असल जिंदगी की उथल पुथल को शांत नहीं कर पाती।
उसका व्यवहार और भी बिगड़ने लगता है।
हाँ, और फिर कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है जब पैलेस हताशा में झील में डूबकर अपनी जान दे देती है। और ये उस गर्मी की मासूमियत और जादू के अंत का ऐलान था।
ये तो उस सपनों की दुनिया का बिखरना है। इस ट्रेजेडी ने लारा और ड्यूक के रिश्ते को कैसे प्रभावित किया?
पैलेस की मौत के साथ टॉम लेक का वो ख्वाब टूट जाता है। लारा और ड्यूक का रिश्ता जो पहले ही दरक रहा था,
वो पूरी तरह बिखर जाता है।
हाँ, लारा को ये साफ हो जाता है कि ड्यूक के साथ जिंदगी कभी शांत नहीं हो सकती। वो एक निरंतर चलने वाला तूफान है। और यहीं उस गर्मी के अंत में लारा एक बहुत बड़ा फैसला लेती है।
वो अभिनय, शोहरत और पीटर ड्यूक सबको छोड़कर कॉलेज जाने का चुनाव करती है।
वो एक साधारण जिंदगी चुनती है।
ये एक बहुत बड़ा फैसला है, एक उभरते हुई अभिनेत्री का चमक दमक की दुनिया को छोड़कर गुमनामी चुनना।
और अब हम वापस 2020 के चेरी के बाग में लौटते हैं,
जहां बेटियां ये सब सुन रही हैं। हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह क्या सोच रही होंगी कि उनकी माँ ने एक सुपरस्टार के साथ वाली जिंदगी छोड़ दी।
बिल्कुल, वे हैरान है, शायद थोड़ी निराश भी। वे ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इतने बड़े दिल टूटने के बाद उनकी माँ को इस शांत खेती किसानी वाली जिंदगी में सच्ची खुशी कैसे मिल गई।
और तभी लारा उस राज से पर्दा उठाती है जिसे वे कभी नहीं जानती थी।
एक ऐसा सच जो पूरी कहानी के मायने बदल देता है।
वो बताती हैं कि उनके पिता जो नेल्सन उस पूरी गर्मी में टॉम लेक में ही मौजूद थे।
हाँ, वह उस थिएटर कंपनी के शांत, शर्मीले और दयालु स्टेज डायरेक्टर थे।
पर्दे के पीछे के नायक।
बिल्कुल, जो चुपचाप सब कुछ संभाल रहे थे और दूर से लारा को देख रहे थे, उससे प्यार करते थे। उन्होंने कभी कुछ कहानी,
अरे, ये तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। इसका मतलब है कि लारा जब ड्यूक के साथ अपने जुनूनी तूफानी प्यार की कहानी जी रही थी, तब उसकी भविष्य की शांत स्थिर जिंदगी उसका पति खामोशी से पर्दे के पीछे सब कुछ संभाल रहा था।
यह जबकि असली प्रेम कहानी खामोशी से हमारे सामने ही चल रही होती है।
और फिर कई साल बाद,
हाँ, कई साल बाद जब लारा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, जो ने उसे खत लिखा और उसी खत से उनके प्यार और चेरी के बाग में बसी इस खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत हुई।
तो ये उस प्यार की कहानी नहीं है जो छूट गया, बल्कि उस प्यार की है जो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था।
बिल्कुल।
तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ पिरोएं तो कुछ बड़े विषय सामने आते हैं। पहला तो यही है कि कहानी कौन कहता है और कैसे कहता है, मतलब स्मृति और कहानी कहने की कला।
हाँ, लारा सिर्फ याद नहीं कर रही है, वो अपनी बेटियों के लिए एक कहानी गढ़ रही है। वो चुन रही है कि क्या बताना है, कितना बताना है, किस अंदाज में बताना है।
वो अपने अतीत को संपादित कर रही है, उसे एक आकार दे रही है।
सही, यह उपन्यास हमें दिखाता है कि हमारी यादें कितनी व्यक्तिपरक होती हैं। हम अपने अतीत को याद नहीं करते, हम उसे कहानी बनाकर उसे अर्थ देते हैं।
और ये कहानी कहने की कला इस दूसरे बड़े सवाल से जुड़ी है कि क्या हमें उन रास्तों का अफसोस करना चाहिए जो हमने नहीं चुने। उपन्यास इस विचार को बहुत खूबसूरती से चुनौती देता है।
बिल्कुल, लारा का अभिनय और प्रसिद्धि छोड़कर एक साधारण जीवन चुनना उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और आत्मज्ञान का प्रतीक है।
उपन्यास यही कहता है कि सच्ची खुशी एक रोमांचक जिंदगी जी लेने में नहीं, बल्कि एक सोची समझी चुनी हुई जिंदगी जीने में है।
उसने तूफान के बजाय स्थिरता को चुना।
और यही उपन्यास का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है, साधारण जीवन की असाधारण सुंदरता।
हाँ, और इसके लिए पैचेट आवर टाउन नाटक का इस्तेमाल एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक के रूप में करती हैं।
वो नाटक जिसमें लारा ने अभिनय किया था।
हाँ, उस नाटक का केंद्रीय संदेश यही है कि जीवन की असली सुंदरता और जादू छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों में छिपा है।
बिल्कुल, और यही इस उपन्यास का भी मूल मंत्र है। चेरी का बाग, परिवार के साथ रोज का काम, पति के साथ एक गहरा शांत रिश्ता, यही सच्ची दौलत है।
तो चेरी का बाग सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, ये खुद एक किरदार है, जीवन के चक्र, धैर्य और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक।
बिल्कुल, और पैचेट इसका इस्तेमाल बहुत चतुराई से करती हैं। जैसे चेरी का फल धैर्य और मेहनत के बाद मिलता है, वैसे ही एक अच्छा सार्थक जीवन भी समय और समर्पण से बनता है।
तो टॉम लेक हमें याद दिलाता है कि सबसे असाधारण कहानियां अक्सर सबसे साधारण जिंदगियों में छिपी होती हैं।
और ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी उस जिंदगी के बारे में अफसोस करने में नहीं है जो हम जी सकते थे, बल्कि उस जिंदगी को पूरी तरह से अपनाने और संवारने में है जिसे हम जीना चुनते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।